एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार और ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे शब्द पर बात करने वाले हैं जो सुनने में आप कह सकते हैं थोड़ा भारी भरकम सा है, हर्म्यूनिउटिक्स।
हाँ बिल्कुल, हर्म्यूनिउटिक्स। और ये शब्द जितना भारी है इसका मतलब आज की दुनिया में उतना ही जरूरी हो गया है ना?
मैं तो कहूंगी कि पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।
बिल्कुल, हम सब हर रोज जानकारी के एक सैलाब में हैं। व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स हैं, इंस्टाग्राम रील्स हैं, न्यूज की हेडलाइंस,
हर तरफ से बस आवाजें आ रही हैं।
एग्जैक्टली। तो ऐसे में ये समझना कि कौन क्या कह रहा है और शायद उससे भी जरूरी क्यों कह रहा है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया। बिल्कुल, और आज हम इसी चुनौती को समझने की कोशिश करेंगे और हमारा जरिया होगी जेन ज़िमरमैन की किताब, जिसका नाम भी यही है, हर्म्यूनिउटिक्स।
हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा दिमाग आखिर चीजों का मतलब निकालता कैसे है।
तो चलिए सबसे पहले उस इंसान से मिलते हैं जिन्होंने ये किताब लिखी है, जेन ज़िमरमैन। वो एक जर्मन कनाडाई विद्वान है और उनकी खासियत यह है कि वो तीन अलग अलग दुनियाओं को एक साथ लेकर चलते हैं।
कौन सी तीन दुनिया है?
दर्शन यानी फिलॉसफी, धर्मशास्त्र यानी थियोलॉजी और साहित्य।
अच्छा, और यही बात तो उन्हें इस विषय पर बात करने के लिए एकदम सही इंसान बनाती है ना?
बिल्कुल, क्योंकि हर्म्यूनिउटिक्स की अपनी कहानी भी तो कुछ ऐसी ही है। इसकी शुरुआत हुई थी बाइबल जैसे धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या करने से।
और आज ये फिलॉसफी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, तो ज़िमरमैन के पास मानो इस पूरी यात्रा का एक बर्ड्स आई व्यू है। सही कहा। और वो सिर्फ एक अकेडमिक विद्वान नहीं है जो मुश्किल भाषा में बात करते हैं। उनका मकसद हमेशा से ये रहा है कि इन गहरे विचारों को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कैसे जोड़ा जाए,
एक पुल बनाने जैसा काम। तो ये तो थे लेखक, अब बात करते हैं किताब की। वो अपनी बात शुरू कहाँ से करते हैं?
वो एक बहुत ही बुनियादी, एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। जब हम कोई किताब पढ़ते हैं या किसी से बात करते हैं, तो क्या उसका सिर्फ एक ही सही मतलब होता है?
हाँ, ये तो हमेशा की बहस है।
या फिर जितने लोग उतने मतलब?
बिल्कुल, एक तरफ हैं वो लोग जो मानते हैं कि हर चीज का एक ही सच होता है, एक कठोर वस्तुनिष्ठता, उसे बस हमें खोजना है।
और दूसरी तरफ?
दूसरी तरफ वो जो कहते हैं कि सब कुछ रिलेटिव है, ये तुम्हारा सच, ये मेरा सच,
और दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है।
हाँ,
ज़िमरमैन कहते हैं कि सच्चाई शायद इन दोनों के बीच में कहीं है, या हो सकता है इन दोनों से परे है। उनकी किताब हमें यही रास्ता दिखाने की कोशिश करती है। वो पूछती है कि हम चीजों को इस तरह कैसे समझें जो ईमानदार भी हो और विनम्र भी।
मतलब हम सच की तलाश भी करें लेकिन ये घमंड ना पालें कि हमें ही पूरा सच मिल गया है।
एग्जैक्टली।
ये तो सुनने में बहुत दिलचस्प लग रहा है। तो ये सोच, ये सफर शुरू कहाँ से हुआ?
इसकी जड़ें तो बहुत पुरानी हैं। प्राचीन ग्रीस में प्लेटो और अरस्तु सोच रहे थे कि भाषा कैसे काम करती है, तर्क क्या होता है। लेकिन असली मोड़ तब आया जब लोगों ने बाइबल जैसे ग्रंथों को गहराई से समझना शुरू किया।
अच्छा।
मध्य युग में एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया था। वो मानते थे कि एक ही लाइन के चार अलग अलग लेवल पर मतलब हो सकते हैं।
चार मतलब कौन कौन से?
एक शाब्दिक, मतलब जो लिखा है वही, फिर सैद्धांतिक, नैतिक और आध्यात्मिक।
वाह, मतलब वो लोग सदियों पहले ही समझ गए थे कि मतलब कोई सीधी सपाट चीज नहीं है, उसकी कई परतें होती हैं।
बिल्कुल, जैसे प्याज की परतें। फिर आया सुधार और प्रबोधन का दौर, और यहाँ दो बड़ी चीजें हुई। एक तरफ मार्टिन लूथर ने कहा कि बाइबल को समझने का हक सिर्फ चर्च का नहीं,
हर आम इंसान का है।
हाँ, इससे लेखक का मूल इरादा क्या था, इस पर जोर बढ़ गया। और दूसरी तरफ प्रबोधन काल यानी इनलाइटनमेंट ने तर्क और विज्ञान को सबसे ऊपर रख दिया। डेस्कार्टे जैसे विचारकों ने कहा कि सच्ची जानकारी चाहिए तो अपने दिमाग से सारे पूर्वाग्रह मिटा दो।
मतलब अपने दिमाग को एक कोरी स्लेट, एक ब्लैंक स्लेट बनाकर फिर चीजों को देखो।
हाँ, ताकि तुम पर किसी पिछली सोच का कोई असर न हो।
क्या ये मुमकिन भी है?
यही तो सबसे बड़ा सवाल था, और इसी सवाल ने आधुनिक हर्म्यूनिउटिक्स को जन्म दिया। और इस कहानी का जो पहला हीरो है वो है फ्रेडरिक श्लियरमाकर,
जिन्हें आधुनिक हर्म्यूनिउटिक्स का पिता भी कहते हैं।
बिल्कुल।
तो श्लियरमाकर का सबसे बड़ा योगदान क्या था?
उन्होंने एक क्रांतिकारी बात कही।
हाँ।
उन्होंने कहा कि समझना सिर्फ मुश्किल किताबों या कानूनों के लिए नहीं है, ये तो हर मानवीय बातचीत की बुनियाद है।
मतलब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब भी हर्म्यूनिउटिक्स काम कर रहा है?
कर रहा है। उन्होंने कहा कि गलत फहमी होना स्वाभाविक है, सही समझ तक पहुंचने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है।
और उन्होंने ही वो हर्मेन्यूटिक सर्कल का आइडिया दिया था, है ना?
हाँ, जो सुनने में बड़ा मुश्किल लगता है
पर है बहुत आसान।
हाँ, ये एक जिग्सॉ पजल जैसा है।
हाँ।
आप एक छोटे से टुकड़े को तब तक ठीक से नहीं समझ सकते जब तक आपको पूरी तस्वीर का अंदाजा ना हो।
और पूरी तस्वीर तब तक नहीं बनेगी जब तक आप छोटे छोटे टुकड़ों को ना समझे।
सही कहा। तो आप लगातार उस टुकड़े से पूरी तस्वीर और पूरी तस्वीर से उस टुकड़े के बीच घूमते रहते हैं, यही समझने की प्रक्रिया है।
ये तो कमाल का आइडिया है। मतलब समझना कोई सीधी रेखा नहीं, एक सर्कल है।
बिल्कुल। श्लियरमाकर के बाद आए विल्हेम डिल्थी, उन्होंने एक और जरूरी फर्क समझाया। उन्होंने कहा विज्ञान दो तरह के होते हैं, एक प्राकृतिक विज्ञान जैसे फिजिक्स,
जो चीजों को एक्सप्लेन करते हैं यानी कारण बताते हैं।
हाँ, कि सेब पेड़ से नीचे क्यों गिरा।
हाँ।
और दूसरे हैं मानव विज्ञान जैसे इतिहास, साहित्य,
ये चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं।
बिल्कुल।
मतलब मानवीय अनुभव को अंदर से महसूस करना।
एग्जैक्टली। ये नहीं बताते कि फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई, बल्कि ये समझाने की कोशिश करते हैं कि उस क्रांति को जीना कैसा महसूस होता था। दिल्थी के लिए हर्मेन्यूटिक्स यही अंदर से समझने का तरीका था।
ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है, लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया।
मार्टिन हाइडेगर।
हाँ,
हाइडेगर ने आकर तो पूरा खेल ही पलट दिया। अब तक सब लोग हर्मेन्यूटिक्स को एक टूल, हाइडेगर ने कहा नहीं, व्याख्या करना कोई ऐसा काम नहीं है जो हम करते हैं, ये वो है जो हम हैं।
एक मिनट, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। समझना हमारा काम नहीं बल्कि हमारा होना है। मतलब मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ बात नहीं कर रहा, मैं हो रहा हूँ, इसका क्या मतलब हुआ?
हाइडेगर का कहना था कि हम इंसानों को इस दुनिया में बस फेंक दिया गया है, हम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए, और आते ही हमें इस दुनिया को, अपने होने को लगातार समझना पड़ता है।
अच्छा।
एक बच्चा भी जब रोता है तो वो अपनी भूख या तकलीफ की व्याख्या कर रहा होता है। तो समझना कोई दिमागी कसरत नहीं है, ये सांस लेने जैसा है, ये हमारे अस्तित्व का हिस्सा है।
और इसीलिए हम कभी भी कोरी स्लेट नहीं हो सकते।
कभी नहीं, हमारे पास हमेशा एक पूर्व संरचना होती है, कुछ पुरानी जानकारी, एक नजरिया और कुछ उम्मीदें।
अच्छा, तो जो एनलाइटमेंट के दार्शनिक कह रहे थे कि अपने पूर्वाग्रहों को मिटा दो, हाइडेगर कह रहे हैं कि ये तो नामुमकिन है।
बिल्कुल। और हाइडेगर के इसी विचार को उनके छात्र हंस जॉर्ज गाडामर एक नई ऊंचाई पर ले गए। गाडामर ने वो बात कही जो आज भी लोगों को चौंका देती है। उन्होंने कहा कि पूर्वाग्रह कोई बुरी चीज नहीं है।
लेकिन ये कैसे हो सकता है? पूर्वाग्रह का मतलब तो होता है बिना सोचे समझे कोई राय बना लेना। ये तो खतरनाक है। अगर हम अपने पूर्वाग्रहों को सही मानने लगे फिर तो
कट्टरता और खुलेपन में कोई फर्क ही नहीं रहेगा।
हाँ।
आपका सवाल बिल्कुल सही है और गाडामर इसका जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि पूर्वाग्रह असल में हमारी पूर्व समझ है, प्री अंडरस्टैंडिंग।
अच्छा।
ये वो चश्मा है जिसे लगाकर हम दुनिया देखते हैं, इसके बिना हम कुछ देख ही नहीं सकते। ये समझ का शुरुआती बिंदु है, अंत नहीं।
ठीक है।
जरूरी बस ये है कि हम इस बात को लेकर सचेत रहें कि हमने एक चश्मा पहना हुआ है, और हम बातचीत के लिए तैयार रहें कि शायद हमारे चश्मे का नंबर गलत हो सकता है।
तो मतलब अपने पूर्वाग्रहों को मिटाने की कोशिश करने के बजाय उन्हें पहचानो और फिर दूसरों की बात सुनने के लिए तैयार रहो।
ठीक समझे। और यहीं पर उनका दूसरा खूबसूरत विचार आता है जिसे वो क्षितिजों का मिलन यानी फ्यूजन ऑफ होराइजन्स कहते हैं।
क्षितिजों का मिलन।
हाँ, सोचिए आप आज 2024 में दिल्ली में बैठकर 16वीं सदी के शेक्सपियर को पढ़ रहे हैं। आपका अपना एक क्षितिज है, आपकी दुनिया जिसमें स्मार्टफोन है, इंटरनेट है।
और शेक्सपियर का अपना एक क्षितिज था उस वक्त का इंग्लैंड।
बिल्कुल। गाडामर कहते हैं कि असली मतलब तब पैदा होता है जब ये दोनों दुनियाएं, ये दोनों क्षितिज उस किताब के पन्नों पर आकर मिलते हैं।
तो मतलब पहले हम सोचते थे कि सच किताब में बंद है, उसे बस निकालना है, और अब हम कह रहे हैं कि सच तब बनता है जब हम किताब से मिलते हैं। ये तो पूरा नजरिया ही पलट गया।
बिल्कुल। अर्थ कोई अखरोट नहीं है जिसे तोड़कर गिरी निकाल ली। अर्थ एक घटना है, एक मुलाकात है जो पाठक और पाठ के बीच होती है।
ये पूरी यात्रा तो कमाल की है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के कुछ बड़े सबक निकालना चाहें तो सबसे पहली और बड़ी बात तो यही हुई कि हम सब पैदाइशी व्याख्याकार हैं।
हाँ, मतलब निकालना कोई खास काम नहीं बल्कि हमारा स्वभाव है।
दूसरा कि हम कभी भी हवा में तैरते हुए चीजों को नहीं समझ सकते। हम हमेशा अपने समय, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा के चश्मे से ही दुनिया को देखते हैं।
जैसे भारत में हम कोई कहानी सुनते हैं तो कहीं ना कहीं रामायण या महाभारत के किस्से हमारे दिमाग में चलने लगते हैं। ये हमारी समझ का हिस्सा है, हम इसे हटा नहीं सकते।
और तीसरा, जो मेरे लिए तो दिमाग हिला देने वाला था, कि हमारे पूर्वाग्रह या हमारी धारणाएं हमारी दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हो सकती हैं।
शर्त बस इतनी है
कि हम उन्हें लेकर अड़ियल ना हों
और उन्हें चुनौती दिए जाने पर बदलने को तैयार रहें।
बिल्कुल।
चौथा कि समझना जानकारी निकालना नहीं है बल्कि एक रिश्ता बनाना है, एक दो तरफा संवाद।
और आखिरी बात कि अच्छा व्याख्याकार होने के लिए सिर्फ तेज दिमाग ही नहीं, अच्छा चरित्र भी चाहिए, मतलब विनम्रता, धैर्य, खुलापन।
हाँ, इस किताब में कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो सूत्र वाक्य जैसी हैं। जैसे एक जगह जिमरमैन कहते हैं, समझ कोई रेसिपी नहीं है जिसे आप बार बार बना सकें, ये तो किसी दूसरे से एक मुलाकात जैसी है जिसमें आपका पूरा वजूद शामिल होता है।
मतलब किसी फॉर्मूले या चेकलिस्ट से आप किसी को सच में नहीं समझ सकते।
नहीं समझ सकते, आपको उस मुलाकात में खुद को पूरी तरह से शामिल करना होगा,
उसे समय देना होगा।
हाँ, एक और विचार है, हमारे पूर्वाग्रह समझने में बाधा नहीं बल्कि वे शर्तें हैं जो समझ को संभव बनाती हैं, बशर्ते हम उन्हें चुनौती दिए जाने के लिए तैयार रहें।
ये हमें सिखाता है कि अपनी धारणाओं को छुपाने के बजाय उन्हें पहचानें और बातचीत का हिस्सा बनाएं।
बिल्कुल।
और मेरा पसंदीदा विचार तो वो क्षितिजों के मिलन वाला ही है। अर्थ किसी अखरोट में से गिरी की तरह पाठ से निकाली जाने वाली चीज नहीं है बल्कि ये पाठक और पाठ के बीच संवाद में होने वाली एक घटना है।
और यही वजह है कि जब हम एक ही फिल्म को 10 साल बाद दोबारा देखते हैं
तो हमें वो बिल्कुल अलग लगती है।
हाँ, फिल्म वही है, हम बदल गए हैं, हमारा क्षितिज बदल गया है।
ये सारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन सवाल ये है कि कल सुबह जब हम उठेंगे तो क्या इसका हमारी रोज की जिंदगी से कोई लेना देना है?
हाँ, ये सबसे जरूरी सवाल है। तो कहाँ लागू होती हैं ये बातें?
मेरे हिसाब से तो सबसे पहले हमारे निजी रिश्तों में।
बिल्कुल।
किसी बहस में सिर्फ अपनी बात सही साबित करने के बजाय एक पल रुककर ये सोचना कि सामने वाला ऐसा क्यों सोच रहा है, उसका क्षितिज क्या है, उसके अनुभव क्या है।
इससे सहानुभूति बढ़ती है और टकराव कम होता है, और मीडिया के जमाने में तो ये और भी जरूरी हो जाता है।
कैसे? कोई भी न्यूज या सोशल मीडिया पोस्ट देखकर तुरंत खुश होने से पहले हम एक पल रुककर सोच सकते हैं, मेरे कौन से पूर्वाग्रह हैं जो मुझे ऐसा महसूस करा रहे हैं, क्या मैं वही सुन रहा हूँ जो मैं सुनना चाहता हूँ।
ये आदत हमें फेक न्यूज और नफरत भरे प्रोपेगेंडा से बचा सकती है।
और आपके काम में भी। सोचिए, एक डॉक्टर जो सिर्फ लैब रिपोर्ट नहीं बल्कि मरीज की आंखों का डर और उसकी कहानी को भी समझता है,
वो बेहतर इलाज कर पाएगा।
या एक बॉस जो सिर्फ सेल्स के आंकड़े नहीं बल्कि अपनी टीम की अनकही परेशानियों को भी समझता है,
वो बेहतर लीडर बन पाएगा।
और शायद सबसे ज्यादा जरूरत आज हमारे समाज को है। हम बहुत आसानी से लोगों पर ठप्पा लगा देते हैं, लेफ्ट विंग, राइट विंग, भक्त, लिबरल।
हाँ, ये तो बहुत होता है।
हर्मेन्यूटिक्स हमें सिखाता है कि दूसरे के नजरिए को दुश्मन का नजरिया समझने से पहले ये समझने की कोशिश करें कि उनका भी एक वैध क्षितिज है, उनकी अपनी एक दुनिया है जहाँ से उनकी बातें उन्हें सही लगती हैं।
और बातचीत का मकसद हराना नहीं बल्कि समझना हो सकता है।
बिल्कुल।
तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ शायद यही है कि मतलब निकालने की ये कला आज के दौर में कोई शौक नहीं बल्कि जिंदा रहने का एक जरूरी हुनर है,
एक जीवन कौशल।
हाँ, हम सब हर पल ये काम कर रहे हैं, और इसे ज्यादा ईमानदारी, ज्यादा जिम्मेदारी और ज्यादा विनम्रता से करना ये हम सबकी जिम्मेदारी है।
मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये रही कि हम अपने विश्वासों पर मजबूती से कायम रहते हुए भी दूसरों के लिए खुले रह सकते हैं। अक्सर हमें लगता है कि या तो हम कट्टर हो सकते हैं या फिर ऐसे कि सब कुछ सही है,
और हर्मेन्यूटिक्स इन दोनों के बीच एक रास्ता दिखाता है।
हाँ, ये कहता है कि अपनी मान्यताओं को विनम्रता से पकड़ो लेकिन उन्हें हमेशा संवाद और नई जानकारी की रोशनी में बेहतर बनाने के लिए तैयार रहो।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है।
ये ऑडियो सारांश आपके लिए कृत फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।